आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
प्रस्तुत है 10 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ईरान ने एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। हालांकि हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों अमरीकी पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे क्षेत्र में सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे वहां से हट जाना होगा। इसी बीच ईरान के सरकारी मीडिया ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास कई हमलों और विस्फोटों की खबर दी है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। वहीं उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में आव्रजन विरोधी प्रदर्शन यानी एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हिंसक हो गए हैं। एक चाकूबाज की घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों में आग लगा दी गई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बात करें केन्या की, तो केन्या में भी अमरीकी सहयोग से प्रस्तावित एक इबोला क्वारंटीन सेंटर के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिले हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों को सैन्य अड्डे की ओर बढ़ने से रोक दिया गया है। उधर अफगानिस्तान के हेरत शहर में महिलाओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग की खबर आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्रेस कोड उल्लंघन के आरोप में कई महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद लोग सड़कों पर उतरते नजर आए, जिसमें कम से कम 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि तालिबान प्रशासन के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन पहले से ही प्रतिबंधित है। आइए अब नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरों पर। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू होने के 6 महीने बाद इसके प्रभावों को लेकर मिली जुली तस्वीर सामने आ रही है। नए नियमों के तहत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नाबालिगों की पहुंच रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि बच्चे अब भी नए अकाउंट बनाकर इन प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने भरोसा जताया है कि NDIS की जगह प्रस्तावित नया कार्यक्रम थ्राइविंग किड्स 2028 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा और इस योजना के तहत हल्के और मध्यम स्तर की विकासात्मक चुनौतियां या ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को नई सहायता प्रणाली में शामिल किया जाएगा। बात करें विक्टोरिया की, तो विक्टोरिया की राजनीति में भी हलचल बनी हुई है। राज्य की लिबरल पार्टी के नेता जेस विल्सन ने कहा है कि वे वन नेशन के समर्थन के बिना भी आगामी चुनाव जीतने को लेकर अश्वस्त हैं। वहीं एक हालिया सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने मौजूदा प्रीमियर जेसिंटा एलन के नेतृत्व में बदलाव की इच्छा भी जताई है। बात करें सिडनी की, तो वेस्टर्न सिडनी एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। नए हवाई अड्डे से पहले उड़ाने 25 अक्टूबर से शुरू होंगी और टिकटों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि पहला जेटस्टार विमान गोल्ड कोस्ट के लिए रवाना होगा। ये एयरपोर्ट जो है वो 24 घंटे संचालित होगा, जो इसे मौजूदा सिडनी एयरपोर्ट से अलग बनाता है। बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की अवधि को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार पद की शपथ ली थी और तब से वे लगातार इस पद पर बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। इस उपलब्धि पर राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समर्थक इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों में इस पर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।